अगर मैं दूसरी जाति वालों को, विशेषकर शुद्ध छोटी जाति वालों को, उसके आसपास भी नहीं जाने दिया जाता था। वो एक मंदिर है जिसमें जब से वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, बना है, निर्माण हुआ है, तब से उसमें कोई जाओ और कोई वहां पर पूजा पाठ करो, किसी को मनाई नहीं है। एक समय की बात है, जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसकी मूर्ति का निर्माण करवाना था। अब मूर्ति बनावा कौन बना देखे? कबीर साहब 81 साल के वृद्ध का रूप बना के, रूप बदल के राजा के पास जाते हैं। इंद्र दमन, मैं मूर्ति बना सकता हूं, कारीगर हूं, और सारे हथियार डाल रखे जोड़े में। कहने लगे जी काफी कारीगर आए, उनसे बनी नहीं, कि मैं बना दूंगा, पर एक काम करना, जब तक मैं नहीं कहूं इस कोठरी को खोलना नहीं जिसमें यह मूर्ति मैं बनाऊंगा। अच्छा जी, एक कमरे में वो पत्थर रख लिया जो भी जिसका वो बनाने थे, और सारे औजार लेकर महाराज जी ने अंदर से सांकल बंद कर ली। कहते हैं एक हफ्ता तक मनाते रहे, और भी ज्यादा समय लग गया। एक दिन गोरखनाथ जी आ जाते हैं, राजा से कहने लगे कि मंदिर में मूर्ति स्थापना नहीं करी? कहने लगे जी कारीगर बना रहा है, और ये बन जाएगी तब स्थापना करेंगे। गोरखनाथ कहने लगे मैं देखना चाहता हूं उसे, मुझे दिखाओ, कहीं गलत ना बना दे कोई। राजा ने कहा कि साहब नाथ जी उसको देखना नहीं, अभी कारीगर ने मना किया है कि जब तक मैं ना कहूं इस दरवाजे को खोलना नहीं। गोरखनाथ जी अंदर लाल आंख कर ली उसकी तरफ, गुस्सा हो गया। अब भाई गोरखनाथ संतों से डर लग गए, राजा ने सोचा यू खाम का कोई श्राप दे देगा और मेरी और बिरान मैटी होगी। कहने लगी महाराज जी आप जानो आपका काम जाने, और ये दरवाजा खुलवा लो, मैं तो देखो जी कह नहीं सकता इनको। गोरखनाथ ने जोर जोर से धक्के मारे, दरवाजा खोलो कारीगर, दरवाजा खोलो कारीगर। दरवाजा क्या न खोलने थे, धक्के से तोड़ दिया दरवाजा। कहते हाथ बनाने रह गए थे, हाथों को बनाना रह गया था, टूंड रह गए न्यू के न्यू, पंजे नहीं बनाए। जब दरवाजा खोल दिया वहां पर कारीगर नहीं पाया, और मूर्ति इनकम्प्लीट, सिर्फ हाथ हाथ बकाया थे, वो हाथ भी नहीं बने किसी पर। उसके बाद वो न्योकिन वो टूंड आज भी जगन्नाथ के मंदिर में स्थापित है, वो मूर्ति जगन्नाथ की। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी बंदी छोड़ के ऐसी परम शक्ति को ना जाने किसने अज्ञानतावश इस महापुरुष को दबा कर रख दिया। एक समय की बात है कि सिकंदर लोधी कांसी में आया हुआ था, और कबीर साहब विशेष चमत्कार उस दिन कराया करते जिस दिन वो राजा वहां आता था। और कांसी नरेश के पास वीर सिंह बघेला ने एक राज दरबार उस राजा का न्यारा बनवा रखा था, सिकंदर लोधी का। एक राजमहल एक राज दरबार जिसमें वो अपना विशेष दरबार लगाता था कुछ समय के लिए आकर के। तो कबीर साहब शाम के समय रविदासियों के साथ और सिकंदर के पास चले जाते हैं, अपने उसके दरबार उसके राजमहल में बैठ जाते हैं दरबार में। साथ ही साथ था ऐसे जैसे बीच में द्वार द्वार कमरा बीच में गेट था। उस दिन वो राज दरबार में बैठे हुए थे, साहेब भी वहीं चले गए, रविदास जी साथ थे। साहेब को आसन दे दिया ऊंचा और सिकंदर अपना नीचे आसन पर बैठ जाते हैं। कबीर साहब एकदम खड़े होते हैं, खड़े होकर अपने पैर पर लोटे का पानी जो अपने कर्मंडल लोटा साथ में रखते थे, डोली रखे आज जैसे, उस लोटे का पानी अपने पैर पर डाल दिया पंजे पर, और इतना बड़ी आसन था वो गीला हो गया। शेख तक ही बैठा था वहां पे, साथ था वो। कहने लगे अरे वो पागल ये क्या कर रहा तू? राजा को नो दिखाण ताई कि देख बोले भगत ने, और गीला कर दिया इतना सुंदर आसन। सिकंदर का भी ध्यान उधर गया, को देखा कि महाराज जी क्या बात होगी, पैर को क्या लग गया? कहने लगे जगन्नाथ के पांडे का पैर जल रहा है, वो खिचड़ी तारा था। खिचड़ी कैसे बनती है, वहां पर 8-7 मटके एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं ऐसे, और नीचे से अग्नि जलाते हैं। उसमें सबसे ऊपर वाला मटके की खिचड़ी पहले पकती है, उसके बाद वो उतार लिया जाता है, दूसरे की पकती है, फिर उतार लिया, इस करके वो सारी पकाई जाती है। जो ही वो पांडा ऊपर से ऐसे मटका उतार रहा था, वो जोर डटा कोनी और ऐसे वह खिचड़ी लुढ़क गई और उसके पैर पर उबलती हुई खिचड़ी पड़ गई। और कहते हैं मैंने वह बुझा दी, वह आग बुझगी ना मर जाता, इतनी जबरदस्त पीड़ा होती उसको। सिकंदर लोदी उस शेख तकी ने बोला जी देखो ये तो झूठ है जी, मेरे मैं नहीं मान सकता। तो क्या करें, कबीर साहब ने नाम बता दिया कि उसका नाम दीनदयाल था, है उस पांडे का। तो शेख तकी के कहने से सिकंदर लोदी ने वो एक दूत भेजा, दो ऊंटों के ऊपर दो सवार भेजे, ऊंटों के साधन ज्यादा चलते थे। वो कई दिन में पहुंचे, 7 दिन में वहां पहुंचे और वो दिन और समय तारीख उन्हें नोट कर लिया था। जाके पूछा कि ऐसे ऐसे दीनदयाल नाम का कोई पांडा है, वो कहने लगे जी है, हमें मिलाओ, हम राजा सिकंदर के दूत हैं, उनसे हमने जरूरी सूचना लेनी है जी। वहां पहुंच गए, क्या नाम है आपका, कि दीनदयाल, इस तारीख को इस समय आप कहां थे, मंदिर में था, क्या कर रहे थे, कि कोई तो सेवा कर ही रहा होगा, कि तेरे पैर पे कोई ऐसे मटका गिरा था, जलती हुई खिचड़ी का गिरा था, तो किसने तेरी दलन को किसने बुझाया, कबीर साहब ने, कौन कबीर, काशी वाला, कहां रहता है, वो तो हरदम यहां रहता है, रोज आता है यहां पर, और जगन्नाथ के ये जितने भी सेवक हैं सब उनके रोज दर्शन करते हैं। वो कहने लगे वो तो वहां भी था, यहां कैसे आ गया, हमने नहीं मालूम कहां था, यहीं पर आया हुआ था। उसके और भी कई गवाह थे कि ऐसे ऐसे कबीर साहब साथ खड़े थे, इतना ठंडा पानी डाला जैसे बर्फ का होता है, अगर कबीर साहब बर्फ पानी नहीं डालते तो हम ले जाते, इतना तो वो मर जाता। उन्होंने दोनों दूतों ने अपनी अपनी पूरी स्टोरी उनकी लिख ली, पूरी कहानी, और दस्तक करवा लिए को 20-20 व्यक्तियों के, वापस आके और सिकंदर लोदी को दिखा दिया, महाराज जी ज्यों की ज्यों सत्य है। बोल सतगुरुदेव, अभी आपने सुना था कि राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पे डाला पानी और जगन्नाथ के पंडे के पैर की अपड़गी आग बुझानी, और दूत भेज के पूछी कहानी जो की तो ही पाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। एक बार क्या हुआ, अब शेख तकी की और ज्यादा जलन बढ़ती ही चली गई। एक दिन कबीर साहब सिकंदर लोदी से कहने लगे महाराज जी सारे के सारे मुसलमानों को इकट्ठे कर ले जावे, कहने लगे हम इसकी परीक्षा लेंगे जी, और जब हम इनको मानेंगे। सिकंदर बोला जी एक बात बताओ पीर जी, आपने कितनी परीक्षा ले ली, और संतों को दुखी नहीं कराया करते, आप तंग पा जाओगे, आप तो खुद जानीदार हो, जान हो, आप सभी कहते हो कि संतों का आदर कराया करें, और तुम उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे हो कि मेरे ख्याल में दुश्मन भी ना करें, तो हम आपके नियम का कैसे अनुसरण करेंगे। कहने लगा विद्वान मत बन सिकंदर, तुझे मालूम है ना मेरे साथ सारे मुसलमान है, अब राज का ऐसा बूंदा चुस्का उसे वो बेचारा ढीला पड़ जावे, अब देख लो महाराज जी थारी मौज। सिकंदर लोदी जाके कहने लगा साहेब ये शेख तकी मुझे जीने नहीं दे रहा, यदि आपकी आपकी क्या राय है, क्या कहता है शेख तकी। ये नो कह है जी कि मैं इनकी परीक्षा लूंगा। कबीर साहब ने बोले भाई ले लेने दे, مجھے مارے گا کوئی بات نہیں، اس کے ہاتھ سے میری لکھ رکھی ہے تو بھائی اور کام کروں گا پھر میں، تم چنتا نہ کر سکندر، تو گھبراؤ مت نہ، اس کو چھٹی دے دے، اب جتنی پریکشا تم لے سکتا اس سے ایک تکی لے لے۔ تو راجا نے آ کے کہہ دیا کہ پیر جی آپ کی موج، کر لو جو تم نے کرنا ہے۔ ایک سرسوں کے تیل کی کڑھائی میں اور سرسوں کا تیل بھر دیا اور نیچے اتنے موٹے موٹے لکڑ لا کے اتنا گزب ابال دیا، ایسے ابلے وہ، اور سارے دیکھیں مسلمان بھی راج دربار کے ویکتی بھی، تو شیخ تکی کہنے لگا اس کبیر جلہائے کو اٹھا کر اس میں کڑھائی میں ڈال دو۔ کبیر صاحب کہنے لگے یا کشٹ بھی کیوں کرو، یہ تو میں آپ پہ بیٹھ جاؤں گا، اتنا کشٹ نہ کرو۔ کبیر صاحب جا کر کے اس کڑھائی میں پرویش کر گئے اور ایسے بیٹھ گئے جیسے جل میں بیٹھے ہوں اور ان کو جلن تھوڑی سی بھی کونا، اپنا سوبھاوک بیٹھے۔ شیخ تکی کہنے لگا کہ راجن اس نے منتر سے تیل کی تاثیر کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب سکندر بولا کہ کچھ تو کرے بیچارا، کچھ تو کرن دے انہیں، تو کر دے اس نے شیخ تکی اس ٹھنڈی تاثیر کو، کہ نہیں دی یہ تو ہوتا ہے کسی کسی کے پاس جنتر منتر، یہ تیل گرم نہیں ہے اس لیے اس کو گرم نہیں لگ رہا۔ سکندر نے سوچی کہ دے سچے یہ ٹھنڈا ہو گیا ہو، ایسے انگلی دینے کے لیے ٹیسٹ کرن کی خاطر ہے، اور کڑھائی میں انگلی دینی چاہیے۔ کبیر صاحب کہنے لگے انگلی مت دینا، ڈھونڈی نہیں پاو گی، کدے نے سوچا بےکوف کے کہنے تر اس میں انگلی کٹوا بیٹھے، پر نہ ماننا جی انہیں سوچا مہاراج یہ نہ جڑتے تو میرے کی فرق پڑے ایک انگلی میں، جتنی انگلی میں پٹ دئی جی اتنی گئی، اتنی انگلی تیل میں پہنچی تھی کٹ کے دور ہوگی، اور بے ہوش ہو کے گر گیا سکندر لودھی۔ اب کبیر صاحب باہر آئے یو بے کو بس راجا نور مروا ہوگا، چلو مہارت کے میں سرونا نہیں کیونکہ اوناشی تھے وہ، تو اٹھ کے راجا کو ہوش میں لائے کبیر صاحب، اٹھو راجا، انگلی کے درد کا مارا پھر بے ہوش ہو گیا، کبیر صاحب نے پکڑ کے وہ انگلی یہ پوری کر دی، اگلے بھائی کیوں دکھ پا رہا ہے، نہ درد رہا نہ کٹی ہوئی انگلی رہی۔ بول ستگر دیو کبیر صاحب، یہ تو 550 پرانا اتہاس ہے، کوئی نہ سوچے 5000 پرانی کوئی کتھا سے، آج بھی پرمان ستیہ ہیں وہاں پہ، آج بھی پرمان ستھان جو کے تو ودمان ہیں۔ اس کے بعد شیخ تکی کا اور دونی آگ لگی کہ یو تو بھائی پوری پربھوتا جما گیا راجا کے اوپر ہے اور جنتا میں بھی اثر ہونے لگ گیا اس کا۔ تو پنجو بولا جی سبھی مسلمان پھر اکٹھے کرے، کیوں یا جڑن جو ایرشا ہو ہے یہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اتنی بری ہوش ہے کہ نہ جانے انسان پہ کیا کروا بیٹھے۔ تو شیخ تکی نے کہا کہ راجا ایک پریکشا اور لینے دے ہم نے اس کی۔ کبیر شیخ تکی نے بولا جی، سکندر لو جی کہنے لگے دیکھو پیر جی میں تو کہوں نہیں ایسے مہاپرش کو اتنا تنگ کرن کی، اور میں جاتا ہوں ان کے پاس پرارتھنا کرتا ہوں۔ کہنے لگے مہاراج جی وہ شیخ تکی مجھے جینے نہیں دے رہا، یا تو میں نے راز تیاگنا پڑے گا مالک۔ کبیر صاحب کہنے لگے نہ بھائی تنہیں کچھ بھی نہیں چھوڑنا پڑے، اس کی میں نے کہہ دیا وہ جو چاہے سو کر لے۔ تو کہنے لگے کیا پریکشا لینا چاہتے ہو پیر جی؟ کہ ہم اپنے حساب کی پریکشا لیں گے، بتانتے کوئی نہ کی کریں گے۔ کبیر صاحب ان کے ساتھ ہو لیا، دیکھ ظلمی جیو صرف نو اس ادیشے سے کہ یہ نہ ہندو نہ مسلمان، اس کا کوئی سپورٹر کوئی نہ، اور اس نے کیوں کرے توڑو، کیوں کرے اس کو دکھی کرو، غریب آدمی ہے، لے کر بندی چھوڑ کو پکڑ کر بازو سے اور ایک زیرے کنویں میں ڈال دیا۔ بہت گہرے پانی ہوتے تھے پہلے 100-100 ہاتھ پہ، یعنی 150-150 فٹ پہ، اور وہ زیرا ایسا ہوتا ہے کہ وہ خراب پانی ہو کر کے نیچے اس کی تھا ایک کونا، उसमें ठा के पटक दिया बंदी छोड़ को, ऊपर ते छड़े यानी ये कांटेदार झाड़ी, ईंट और छोटी ईंट माटी गोबर गारा वो फुल कर दिया ऊपर तक। और शेख तकी ने कहा देखू तना इब निकली है बाहर। शेख तकी ना दो के और ओढ़ तुर्रा बांध के ऊपर साथे का और दरबार में जा नू करके कहने लगा सिकंदर लोधी से कहता राजन आज उसका टंटा मेट दिया। किसका मेट दिया? कबीर साहब का। कहने लगे महाराज जी तो ये बैठे कमरे में अंदर अंदर जाके देखे उसके दो फर फर जो है ना सारी काया अलग या कौन कहानी बन गई अपने हाथा हजारों आदमी आगे उसके अंदर डाल कर आए। कबीर साहब कहने लगे ये बैठे साहब तो ये तो जब आगे तो दो मिनट पास है, मैंने सोचा ये फेर पेंडिंग गुड़ाई रहेगी होगी थारी, मैं तो सोच में रहा था कि आगे फेर करते होगे कभी आज छोड़ गए होगे इनको। अब भाई उसका तो बड़ा जुलम होया कि तो है क्यों कर मरे है अरे यू मरे बिना तेरा राज दरबार में पांच टका नहीं बात बिगड़ गई। उसने के करा पांच सात गुंडे तैयार करे कि आज कबीर साहब को काट का नाम है, रात ना उसकी झोपड़ी में काटाएंगे। पांच सात गुंडे लेकर तलवार लेकर स्वयं शेख तकी साथ गया रात्रि के समय। कबीर साहब सो रहे आंगन में चांद का चांदना। अन्य बोला कति टुकड़े टुकड़े करने इसके बच नहीं जा, ऐसे मंडगे उसकी बंदी छोड़ के जैसे सानी काट देते हैं टुकड़े नहरे नहरे हो गए और तलवार मारे ऐसे निकल जा जैसे पार निकल गई हो। वो तलवार मारे जैसे पेरा भी नहीं रूई काट रहे हैं या कितना लग भी ना रही है पर शरीर नहरे हो जा। और वो इन्हों बोले ले जी शेख तकियाज काट दिया इसकी सारी बीमारी तेरी खत्म कर दी है। वो चलन लागे कबीर साहब खड़े हो गए कहने लगे शेख तकी बैठ जाओ कि मैं दूध पियो हमारे दरबार पर पहली बार आए हो द्वार पे। उन्हें देखे ना खड़े वो काटड़िया ने उनकी इधर टट्टी पेशाब और वो मारी डांक बुखार चढ़ गया कहने यू के बीमारी भाई भूत तो नहीं। कहते हैं सातवें दिन बंदी छोड़ने जाकर चार पांचा का बुखार उतारा इतना भय बढ़ गया उनके गात में। कहने लगा बोले पुरुषो क्यों मरो हो तुमने मरना है ये शेख तकी मरवाओ तुमने और मुझे कोई मार नहीं सकता इस पागल के चक्कर में मत आइयो आगे और मैं कोई भूत कोई ना भाई मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूं। जब जाकर उनका कलेजा धड़कन बंद हुई थी उन गुंडों की जो शेख तकी के कहने से उस बंदी छोड़ भगवान को काटने के लिए गए थे। एक समय की बात है कि कबीर साहब ने सोचा क्योंकि साहब के 64 लाख से सो गए थे 64 लाख उन्होंने सोचा कि इनको कोई मेरे प्रति विश्वास भी है या मेरे चमत्कारों को लीलाओं को अपने हुए सुखों को देखकर और देखा देखी नाम ले रखा है। इतनी कठिन परीक्षा ली बंदी छोड़ने किस लिए? ये उदाहरण पेश कर दिया कि अपने गुरु को कभी भी शक की दृष्टि से मत देखना नहीं तो आपकी भक्ति बर्बाद हो जाएगी। गुरु के अंदर दोष देख लिया तो क्या किया? एक दिन एक काशी की मैसूर वैसा जो प्रसिद्ध गणिका थी वैसा थी और खूबसूरत थी और सबने मालूम था कि वैसी बद औरत है, उसको अपना मार्ग समझाया कबीर साहब ने। कहने लगा बेटी ये मनुष्य जन्म बर्बाद करने के लिए नहीं मिला, अज्ञानता में ना बेरा किस पर की गलती हो जा, अब इस कर्म ने त्याग के और अपना भजन करा करे। अकमार अजी मैंने नाम दे दो आज के बाद हमने अपना भक्ति मार्ग ही पकड़ना है तो रोटी भूखी भी रह जाऊं। तो वो लड़की अपने दुष्कर्म ने त्याग के सद्भाव से भक्ति पर लग गई। एक बीमारी और है हमारे संसार में कि जो फीत एक बार ला दी उसने उतारे कौन है। वो लड़की भक्ति करे और 6 महीने हो गए उसने नाम लिए ने और लोग फिर भी उसको वैसा कहते हैं उसको गणका कहते हैं। कबीर साहब कहने लगे बेटी एक काम करा तुम्हारा तू। जो बोली महाराज जी ये जान भी आपकी है जहां लाओ वहां ला लो। कैसे करना? कल तू खूब हार श्रृंगार करके हर अच्छी तरह कपड़े सुंदर पहन के हमारे साथ चलना। अच्छा महाराज जी, तो लड़की ने सवेरे उठकर अपने सारे नहा धोकर स्नान किया, सारे हार श्रृंगार पहन के चल पड़ी। रविदास जी कबीर साहब एक किराए पर हाथी ले आए, हाथी का ऊपर आगे तो कबीर रविदास को बैठा दिया, भाई तुम हाथी नहा के जाइए, और बीच में वह लड़की बिठा ली और एक बोतल में गंगा जल भर लिया शीशी में, और लड़की के कंधे पर हाथ धर लिया। वो तो उनकी पुत्री थी, लेकिन जिसमें जैसा विकार वो अपना ही आपे देखा करता है। उस लड़की के एक हाथ कंधे पर रख लिया, एक हाथ से वो दारू पी रहे हैं, जैसे दुनिया की दृष्टि में वैसे वो गंगा जल था, और काशी के बाजार में कह निकल गए सारे कह, जो भी देखे वही नोके, देखो भैया आओ तुम्हें दिखाऊं, हम तो पहले ही कहते थे कि ये तो गुंडा व्यक्ति है, ऐसे औरतें इसके पास जाती हैं और तुम मान्या ना करते। उनके शिष्यों को लाओ पकड़ पकड़ कर गुद्दी से, अब देख तुम्हारे गुरु के को क्रम, हम तो पहले ही कहते थे ये नीच दुलाहा है। हमारे कैसे अनजान थे, उन्हें सोची भाई साचे आज तो गुरु जी अनचाला पैड दिया, हम तो कितने जोगे को ना छोड़े। लेकिन उन बुद्धि भ्रष्टों ने ये नहीं सोचा कि ये महापुरुष और ये कर्म हाथी पर बैठ कर करें, पर बुद्धि भ्रष्ट होगी हमारी, अपने गुरु को गालियां दें, कोई न कहो मैंने तो वैसे ही नाम ले लिया था, एक दिन चले गए थे, दो बात सुन ली थी, मैं उनका चिल्ला चाला कौन ही, सारे 64 के 64 लाख नरक में चले गए गुरु के प्रति दोष देख के। कहते हैं दो बच गए, अर्जुन और सर्जुन नाम के, वो बाहर गए हुए थे, वापस आए, उन्होंने भी सुना कि ऐसे ऐसे गुरुदेव ने चाला कर दिया, कभी कितना जोग का काम नहीं छोड़ा, हम तो बाहर निकलने जोगे नहीं रह रहे। भाई क्या हो गया कि ऐसे ऐसे एक गणका के साथ बहुत बुरा कर्म करते देखे सारी दुनिया ने, ऐ तेरा बोला न्यू बोला रहे मुंह बंद कर बात करो महाराज जी, ऐसा कर्म कभी नहीं कर सकते। न्यू बोला कोई ना दस्ती, अग नहीं मेरा हमारा यकीन नहीं है। कहने लगे वो दूसरे के जाके देख ले, आज भी उसके आंगन में बैठे हैं दोनों, वो कबीर साहब उस वैश्या के घर में, उन्होंने नो मालूम था कि वो बिल्कुल गंदी औरत है, अर्जुन सर्जुन को भी, लेकिन नो नहीं मालूम था, उन्हें नाम ले लिया, वो कई दिन में साल भर में बाहर से आए थे, उन्हें जाकर देखा महाराज जी आंगन में बैठे हैं, लड़की उनके पैर दबा रही है, वो खाट पर बैठे हैं। ऐसे गली में खड़े होकर अर्जुन सर्जुन कहते हैं गुरुदेव महाराज जी तो जानी जान से देख रहे थे, बॉडी पीरियड और आन लाग रहे हैं, तो कहने लगे क्या बात है कि गुरुदेव आपने यहां नहीं बैठना चाहिए था, ये तो नीच का घर है। कबीर साहब ने बोले भाई तुम तो मेरे गुरु हो गए, जब गुरु ने आदेश देने लगे कि जाओ तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं इस पृथ्वी पर, भाग जाए से। अब वो विद्वान थे, समझदार थे, कहने लगे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, जब गुरु में दोष देख रहा तू, दोनों के दोनों हाथ जोड़कर एक एक कदम एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। कहने लगे महाराज जी गलती होगी, हम पापियों का उद्धार कद होगा कि भाई फिर दोबारा आऊंगा मैं जब तुम्हारा उद्धार होगा, कब आओगे कि ये अभी नहीं बताता, 100 वर्ष भी लग सकते हैं, 150 भी लग सकते हैं, 200 भी लग सकते हैं, तो महाराज जी हम इतने दिन क्यों कर रहेंगे कि मेरी कृपा से तुम इसी शरीर में रहोगे। तो गरीबदास के रूप में कबीर साहब फिर दोबारा आए छुड़ानी में, तो अर्जुन सर्जुन को जब नाम देकर उन्होंने दूसरे तब पार किया, वो 200 वर्ष के महापुरुष हो चुके थे, उनकी आयु हो रही थी, और गरीबदास जी ने छोटे से थे जब उनको नाम देकर के पार किया था। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले संग लेली गणका माई, और गंगोदक, गंगोदक कहते हैं गंगा जल को, गंगोदक शीशी में भरकर मदरा जो पीवे भाई, मदरा कहते हैं शराब को, और 64 लाख ने भक्ति बहाई खत्म कर दी, मूर्ख को नहीं प्रतीत आती है, सतगुरु अपना साथी है हरदम साथी है। इस बात को देखकर सारी काशी में चर्चा होगी, शेख सिकंदर लोदी वहां गया हुआ था उस समय, तो सारे गांव उस वहां के लोग इकट्ठे होकर राजा के पास पहुंचे, کہنے لگے مہاراج جی مہاراج جینا آرام کر دیا اس کبیر نے. کیا کر دیا؟ ایسا ظلم کیا ہے اس نے کہ دھرتی پاس تک کسی نے نہیں کیا ہو. ہم تو اپنی بہن بیٹیوں کو ساتھ لے کر باہر نکلن دوگے نہیں چھوڑے. ایسا ظلم کر دیا. وہ ساری کتھا بتا دی کہ ایسے ایسے لڑکی کو ایک ویشا کو ساتھ لے کر دارو پیتا ہوا اور اس کے ساتھ ایسے بات بھر کے اور سارے بازار میں برے کرم بری راگنی گاتا ہوا جا رہا تھا. اب جب ہزار آدمی جا کے کہیں راجا کے پانکی تو ہوگے نہیں, بولا بھائی ایسے کرو بھائی کیا کرنا ہے کہ جو اس نے ختم کر دو, ایسی موت مارو کہ دنیا دیکھے. شیخ تقی نے بھائی موقع مل گیا, کہتے کھنی ہاتھی آگے ڈالنا اس نے. اب باندھ لائے جی بندی چھوڑ کو پکڑ جائے, باندھ کے پیر ہاتھ جوڑ کے میدان میں ڈال دیا اور دیکھنے والے دور دور کھڑے ہو گئے. سکندر لودھی اوپر برنڈا بنوا لیتا تھا, بنوا رکھا تھا وہاں پر جہاں پر یاتنا دیا کرتے تھے, وہاں پر بیٹھا ہے اوپر. ایک کھنی ہاتھی کو دارو پلا کے پیلوان اوپر بیٹھا ہے اور کبیر صاحب کو مروانے کے لیے کھنی ہاتھی سے کہ نوچ نوچ کر گوڈے مار مار کر پاڑ کر اس کو ایسے ڈنگ سے مارو کہ اور دنیا ایسا ظلم نہ کر دے وہ ڈرانے کے لیے. ہاتھی نے جب لے کر کے پیلوان آگے کو چالا ہے, کبیر صاحب نے شیر کا روپ دکھا دیا اس ہاتھی تائیں. ہاتھی نے ماری چنگاڑ اور لید کرے اور بھاگیا جا الٹا. اب پیلوان ڈر گیا کہ راجا تنے مارے گا کہ بھی اتنے دن میں ہاتھی تیرے کو دے رکھا تھا اور تو نے اس کو اتنا بھی کنٹرول نہیں ہوا. اب اس نے بالے ٹھوک دیے اس کے انکش مارے زور زور کے, ہاتھی پھر واپس ہو لیا. اتنی دور آ گیا مہاراج نے پھر روپ دکھا دیا گوبر شیر کا. ہاتھی پھر پیلوان کیتا ہاتھی کیتا وہ بھاگ گیا وہ بھاگ گیا. اب راجا نے سوچا نہ اس نے صاحب نے سوچا کہ راجا بھی اس کو پیڑا دے گا پیلوان کو بھی, یہ بیچارے نے دکھی کرے گا اور اس جیو نے پھیر لیاؤں گے ہاتھی نے میری خاطر. بندی چھوڑ کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنا اونچا سروپ دکھا اس بادشاہ نے کہ مانو کال دکھائی دیا ہو. وہیں سے ایسے گھبراتا ہوا جیسے کاپتا ہوا سکندر لودھی اور میدان میں آ جاتا ہے, صاحب کے چرنوں میں پڑ جاتا ہے, ہاتھ جوڑ لے مجھے معاف کر دو پروردگار میرے سے غلطی ہوگی, میں نیچ آتما ہوں جی, میرے کو تو یہ لوگوں نے آ کے بتا دیا تھا, میں نے اس لیے آدیش دے دیا تھا, معاف کر دیا. کبیر صاحب آگے گھر نے شیخ تقی نے پھر سسکار دیا لوگوں کو کہ راجا نے تو بھائی یہ تو اس کی مہر کرائے, ایسے بات نہیں بنے گی, اس کو ختم کریں گے. تو لوگ پھر کٹھے ہو کے گئے جی نو نہیں بات بنے, ہم ایسے نہیں مانیں, اس کو ختم کریں گے. بلا بھائی کر لو ختم, کیسے کرو گے؟ تو اس کو پکڑ کے کبیر صاحب کو اور کشتی میں بٹھا کے گنگا کے بیچ میں جا چھوڑیا, پکڑ کے وہاں نو ڈال دیا. کبیر صاحب اس جل کے اوپر ایسے بیٹھے جیسے تھل پر بیٹھا کریں, این ٹھاٹ سے اوپر بیٹھے اور دنیا دیکھے ڈوبیا کو نہیں, اتنی غضب کی لہر کہ اس کو ختم کر دے وے ایک منٹ میں بھی نہ پاوے. اور بندی چھوڑ اس لہر کے اوپر ایسے بیٹھے, ایسے ہو رہے ہیں بیٹھے بیٹھے اور پانی نیچے سے جا رہا ہے. اب نہیں بسائی تو کہتے ہیں پھر لائے الٹے پکڑ کے, ان کے گلے میں رسے باندھ کے پتھر باندھ دیے, اتکڑی جڑ دی اور پایا میں بیڑی اور اتنے بھارا بھارا پتھر باندھ کر نو لڑکا دیے. مہاراج جی نو کے نو بیٹھے, وہ پتھر بیڑی جڑکے اور پانی میں چلی گئی اور صاحب اوپر نو کے نو بیٹھے. اب کیا ڈڑے مارن لائے گئے پتھر سے بھارا بھارا مارے, ایک بھی نزدیک نہیں تھا, کوئی ادھر گرے کوئی ادھر گرے کوئی وہیں گر جاوے, کو پرلے پار چلا جاؤ پرلے دوسری دور جا پڑے. پھر سینکوں کو آدیش دیوا دیا شیخ تقی نے کہ گولیاں مارو, پھر گولی مارن لائے گئے, ایک بھی گولی بندی چھوڑ کی طرف نہیں جاوے, ایسے پھر جاوے. بندوق کی گولی کدے ایسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے نشانہ لیں, گولی ایسے جا رہی ہے, ایسے جا رہی ہے. آخر میں غریب داس نے لکھا کہ توب منگوا لی, آٹھ پیر تک توب کے گوڑے اس بندی چھوڑ کے اوپر چھوڑے ان نیچ آتماؤں نے. جب صاحب نے سوچا یہ مورکھ اناڑی لوگ ایسے نہیں مانیں گے, جل میں ڈوب گئے, دکھائی کون دیے, اگے چالے جائیں گے بے کوپیا تک کوئی نہ دیتے, जल में चले गए। सबने सोचा कि अब ये मर गया और इसके ऊपर रेता फिर जाएगा, खत्म हुआ। सब खुशी मनाते हुए आ जाते हैं और जाके बताएंगे रविदास को, वो बहुत गणे गुण गाया करता, ये अविनाशी है, ये भगवान है। जब वो नजदीक पहुंचे तो कबीर साहब वहां बैठकर रविदास के पास शब्द गा रहे हैं और उन्हें जानते सुना कि ये शब्द तो कबीर साहब की आवाज है। अंदर जाके देखा रविदास अकेले बैठे हैं तो वो सभी शेख तकीर सब कहने लगे, ये आवाज कहां से आ रही थी दूसरे व्यक्ति की, ये कौन था? अब कबीर साहब थे कहां हैं कि अभी तो गए हैं, आपने मिले को ना? अग नहीं, हमें तो दिखाई नहीं दिए। उनने सोची यार हम उड़ा हमारे सामने वहां डूब गया, दुनिया देखे यहां कैसे आ गया, आवाज भी नहीं की। फिर वापस गए आगे देखा कि डूब गया है कि नहीं। कबीर साहब फिर ऊपर आ जाते हैं, न्यों के नहीं वहां पर खड़े हैं, उसके ऊपर दिखाई नहीं दिए उनको, पहले दिखाई नहीं दिए फिर ऊपर फिर प्रकट हो जाते हैं। तो आखिर में आर थक के वो अपने घर चला जाते हैं, बंदी छोड़ वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, अपने स्थान पर आ जाते हैं। एक समय क्या हुआ, अब शेख तकी ने आखिरी झटका दिया कबीर साहब को, ऐसे ऐसे 52 चमत्कार हैं। उनके सोचा कि काशी के सभी हिंदू और मुसलमान, वहां के पांडे जो मौलवी काजी पंडित सारे इकट्ठे कर लिए और उसको कह गया कि तुम एक ऐसा झटका दो इसको कि ये काशी छोड़कर चला जा। सभी ने विचार किया कि ऐसा करते हैं कि कबीर साहब के नाम का झूठा प्रचार कर देते हैं कि कबीर साहब फलाने दिन भंडारा करेगा, 3 दिन का भंडारा होगा। ऐसा विचार विमर्श करके उन अनजानों ने कबीर साहब के नाम से चिट्ठियां बना बना के सभी महापुरुषों के पास सारे हिंदुस्तान में भिजवा दी। 1 महीना पहले ऐसा प्रचार कर दिया। जिस दिन निश्चित समय था उस दिन 18 लाख व्यक्ति और काशी में चौपड़ के बाजार में आकर डट जाते हैं। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था, 18 लाख, जिसमें महात्मा सभी बेखों के हिंदू और मुसलमान भी सारे आकर के 18 लोग वहां पुरुष वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। रविदास जी सवेरे सवेरे घूमने के लिए जाता है, वो पूछता है कि महापुरुषों आज कैसे एकत्रित हुए। वो कहते हैं कि काशी के लोगों तुम बावड़े तो नहीं होगे, जो आता वही पूछ रहा है कि आप कैसे आ गए, यहां कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं तुम्हें मालूम भी को ना। रविदास के कौन कबीर, ले तुम कबीर को भी नहीं जानते, इसने जिसने इतना बड़ा भंडारा करने जा रहे हैं, इतना विशाल भंडारा हो रहा है। कबीर साहब रविदास कहने लगे फिर भी बताओ तो कि वो काशी वाला दुल्हा कबीर। दुल्हा कबीर भाई कैसे आए तुम, कोई चिट्ठी गई? हां देखो पत्र हमारे पास है, वो पत्र पढ़ के सुनाओ। उसमें लिखा कि फलाना दिन काशी में रहने वाला दुल्हा कबीर भी भंडारा कर रहा है। रविदास जी तो बेचारा कित दंगल पानी जावा था, वापस हो लिया, आकाश तक काम कति डबोए दिया इन्हें। कबीर साहब से जाके कहा कि साहेब आज काशी छूटेगी अपनी। अब क्या बात होगी भाई, वो तो सारी जाने थे। कहने लगे 18 लाख आदमी जहां तक देखे महापुरुष महापुरुष, और भंडारा कहते हैं कबीर साहब कर रहा है, झूठी पर्चा चिट्ठी लिख रखी है और दुनिया आ गई महाराज जी क्यों बात बनेगी। कहने लगे आप यहां मेरे पास बैठ जाओ और कवाड़ बंद कर लो अपने, हम कितने रोटी देंगे, हमारे पास अपना पेट ना भरता, अपने आप चले जाएंगे घूम फिर के। हमारे साथ भाई बदतमीजी घनी कर दी इन लोगों ने, ये नहीं चाहते कि हम काशी में रहें, और भाई काशी भी छोड़ देंगे कोई बात ना, बैठ जाते बैठ के आकार रूप में रविदास को दिखा रहे हैं, निराकार रूप में अपना दूसरी स्वरूप में बंदी छोड़ सतलोक पहुंचे। वहां पहुंचे तो वहां कहा कि ऐसे ऐसे 9 लाख बैलों के ऊपर और सामान बना बना भेजो। तो वहां कहते हैं महाराज असंख्यों तैयार खड़ी हैं पहले ही, और जितने बैल ले जाने हो ले जाओ। वो संत वहां की हंस आत्मा बैल बनी, उनके ऊपर पके पकाए खीर के माट, पूरी, हलवे, सारी प्रकार की बर्फी, जलेबी, लाडू, 9 लाख बैलों की गून पर, जैसे गधे का बोरा होता है ऐसे बैलों के ऊपर गून रखा करते, वो पवित्रता का प्रतीक होता था। और केशव नाम का बंजारा बनकर वही परमात्मा कबीर साहब और उन बैलों को, 9 लाख बैलों के ऊपर सामान लेकर चौपड़ के बाजार में काशी में तंबू लगा दिए और सभी तंबुओं में ढेर के ढेर लगा दिए। इनके पूरियां की पाड़ पड़ी, 9 लाख आदमियों का खाना थोड़ा ही हो सह, जो इतना ढेर का ढेर कित माट दरिए तो खीर के नरे रखे हैं, कहीं पर हलवे के, और भंडारा शुरू हो जाता है। उधर से सिकंदर लोधी को भी आमंत्रित कर रखा उस चिट्ठी में। सिकंदर लोधी शेख तकी दोनों आ गए और शेख तकी चावे था काज पोल पाटेगी से आके मेला देखा कि कबीर साहब कहां है, और मेले में जय जयकार हो रही, खावा बंदी छोड़ के गुणगांव, भाई कभी आज कैसा भंडारा हमने नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट भोजन, और जो मांगे वही प्राप्त हो, वैष्णव भोजन जो चाहो मिल रहा है। सारे मेले में क्या सिकंदर लोधी कबीर साहब को ढूंढ रहा, कबीर साहब नहीं है, पता चला कि साहब तो अपने घर पर बैठे हैं। कबीर साहब के पास सिकंदर लोधी अकेला आता, शेख तकी को वहीं छोड़ दे है, इधर बागुड़ और दुखी करेगा मुझे, उस मेले में छोड़ा है उनको कि आप यहां बैठो मैं जाता हूं। कबीर सिकंदर लोधी साथ में उनका पीलवान, 5-4 सैनिक आथी पर बैठकर सिकंदर लोधी कबीर साहब की झोपड़ी के आगे पहुंच गया, जाकर के कहने लगे महाराज जी दरवाजा खोलो। कबीर साहब बोले भाई कौन है? कि सिकंदर लोधी दिल्ली से आया हूं, ये महाराज जी दर्शन दो। कहने लगे राजन हम तो आज रहेंगे यहां पे, रात को निकल जाएंगे यहां से, ऐसे ऐसे हमारे साथ बहुत जुल्म कर लिए इन लोगों ने, अब हमारे बस का नहीं इनके जुल्मों को सहन करना, 2 रोटी का मेरे पास साधन नहीं और बच्चों का पालन पोषण भी मैं तानी बनकर कर रहा हूं, और आज मेरे साथ में इन्होंने साथ जुल्म कर दिया। कहते हैं 18 लाख व्यक्ति, अरण्यों कहते हैं झूठा प्रचार कर दिया, कबीर साहब भंडारा देगा, मैं कहां से दूं महाराज जी आप ही बताओ। सिकंदर लोधी कहने लगाए परवरदिगार ये किसी और न बहकाना आप, जिसने आपकी लीला ना देखी हो, क्या हो गया मैं सिकंदर शेख तक इधर डरता ना बोलता, क्यों उसने डर लागे कदे तेरे राज ने ना खो दे, पर बंदी छोड़ मेरे हृदय में जगह आपके प्रति ज्यों की त्यों है, एक बार दर्शन दे दो महाराज जी दर्शन दो। रविदास से कहा दरवाजा खोल दे भाई। आके सिकंदर लोधी चरणा में पड़कर रोन ला गया, बंदी छोड़ एक बार चल करते देखो अपने के रंग ला रखे वहां पे। कबीर साहब कहने लगे जी, कबीर साहब से वो कहा सिकंदर ने एक बार महाराज जी मेरे साथ चलो मेले में। जब कबीर साहब खड़े हुए ना चलन की खातर, आकाश से फूल बरसन ला गया बंदी छोड़ गया ऊपर, बोल सतगुरु देव की, अपने आप ढेर ला गया वहां पर फूलों का। सिकंदर लोधी ने कबीर साहब को हाथी पर बैठाया अपने चैंडौल में और अपने हाथ नो चौर करने लाए गए उनके ऊपर। पहले रविदास करने लगा, फिर रविदास से ले लिया, मन दे दो महाराज जी आप तो रोज सेवा करते हो परवरदिगार की, और स्वयं उसका शेख तकी उस परमात्मा की चौर करता हुआ और मेले में पहुंचे। वहां पर केशों से पूछ रही है वह दुनिया कि आप कबीर साहब के क्या लगते हो? वो कहता मैं उनका दोस्त हूं पगड़ी बदल, मेरे पास चिट्ठी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा है और कुछ सामान लेते आइएगा। ओए होए होए वो तुरबलो इतने बड़े भंडारे को, अरण्यो कहे छोटा सा भंडारा है कुछ सामान लेते आइएगा, मैं तो उसका दास हूं भाई, ऐसे ऐसे लाख भंडारे करेगा तो भी दूर नहीं उससे। तो शेख वहां आगे बंदी छोड़ और मेले में घूम रहे हैं देख रहे हैं। आखिर में केशव के तरफ से एक संदेशा आया कि साहेब आप मेरे तंबू में आइए। कबीर साहब उतर के साथ में शेख तक सिकंदर लोधी और तंबू में चले जाते हैं। वहां पर 8 पैर तक केशव प्रश्न करता कबीर साहब से डबल रोल में कि महाराज जी क्यों आए इसे गंदे स्थान पर, एक पल का एक सुख का सांस आपको ये लेन नहीं देते दुनिया। कहने लगा केशव तू नहीं जानता मेरे दुख ने, ये सारी मेरी आत्मा है, आप کیسو نے کہا کہ آپ ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتے، شیخ تقی جیسے دلیل کو آپ کو اتنا تنگ کر رہا ہے کہ کس کو ختم کر دوں، یہ تو اناڑی ہے، یہ ہے تو میرا ہی بچہ، کیونکہ سب آتما میری ہے، ستلوک سے آئی ہوئی ہیں، ان کو ماروں تو ماروں کس کو، اس کر کے پنتی چھوڑنے اتنا دیا بھاؤ دکھا رہا، دنیا کی چون توڑی، آٹھ پیر تک ستسنگ ہوا وہاں پر، اسی ستلوک کے بارے میں جانکاری وہاں بندی چھوڑنے دی، بول ست گردیو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ بھنڈارا سماپن ہو لیا، تین دن بھنڈارا چلا، ایک دن میں تین جون ہوتی ہیں، صبح ناشتہ، دوپہر نے کھانا، شام نے پھیر، اور تین دن تک، اور 18 لاکھ ویکتوں کا، اوئے ہوئے، گریب داس جی کہتے ہیں کھلا بھنڈارا، غیب کا بن چٹھی بن نام، اور گریب داس مکتا تلیں دھن کیسو بلی جام۔ جب چلنے لگے وہ کیسو دنیا کے سامنے، کبیر صاحب مستم آ گیا، اکیلے کبیر صاحب رہ جاتے ہیں، وہاں کیسو نہیں رہا، بول ست گرو دیو، ست ساہے مکتی کا مارگ زور ہے، کوئی دیکھو ست سنگ کر، مکتی کا مارگ جور ہے، کوئی دیکھو ست، کوئی دیکھو ست سنگ کر کے، کوئی دیکھو ست کے، مکتی کا مارگ جور ہے، کوئی دیکھو ست سنگ کیا تھا انو بزرنگی نے، منیندر جی کے سنگ میں، ست سنگ کیا بزرنگی نے منیندر جی کے سنگ، کہے منیندر سنو انمانا، تم اڑ جے پھیکے رنگ میں، کہے منیندر سنو انمان، تم اڑ جے جھوٹے رنگ میں، یہ 30 کروڑ رام او زالیے، جیت جیت کے زنگ نے، یہ 30 کروڑ رام او زالیے، جیت جیت دیکھا ست لوک نظارہ تھا، ودھی پوچھی چرن پکڑ کے، ودھی پوچھی چرن پکڑ کے، ودھی پوچھی چرن پکڑ، مکتی کا مارگ جور ہے، کوئی دیکھ کر کے، مکتی کا ست سنگ کیا تھا جوگ جیت کے ست سنگ میں، ایک دن آ گئے کاغ بھوسنڈا، جوگ جیت کے ست سنگ میں، ایک دن آ گئے کاغ بھوسنڈا، ایسا ست سنگ نہیں سنیا میں، پھر لیا نو کھنڈا، ایسا ست سنگ نہیں سنیا میں، پھر اپدیش لیا جب سمرن کینیا، تب مٹیا کال کا ڈنڈا، اپدیش لیا پھر سمرن کینیا، تب مٹیا کال کا ڈنڈا، وہ کرے ادینی بندگی ستگر چرنا کے ماں پڑھ کے، ستگر چرنا کے ماں پڑھ کے، ستگر چرنا کے ماں پڑھ کے، مکتی کا مارگ جور، مکتی کا مارگ جور ہے، کوئی دیکھو ست سنگ کر کے، کوئی मुक्ति का मार्ग तोरे है कोई सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने सत्संग किया सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने आके सत सुकृत के स्वाद बतावे जो गूंगा खा के गुड़ ने कह सत सुकृत के स्वाद बतावे गूंगा खा के गुड़न अकड़ घणी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मोड़ने अकड़ घणी थी ज्ञान की निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से तब सुरत अगम को सरक तब सुरत अगम को सरक तब सुरत सरक मुक्ति का मार्ग जोर कोई मुक्ति का मार्ग जोर कोई कोई देखो सत्संग करके कोई देखो की का मार्ग जोर साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी साहेब कबीर ने नानक जी कही अगम की कह नानक में तो वाको मनुजा की जोत स्वरूप निशानी कह नानक में तो उसको मनुजा की जोत स्वरूप देखी सतलोक की चांदनी वा ज्योति फीकी जानी देखी सतलोक की चांदनी वा ज्योति फीकी जानी वाहे गुरु सतनाम कया उन गणी उमंग में वर के उन गणी उमंग में भर के उन गणी उमंग में मुक्ति का मार्ग ओ है कोई दे मुक्ति का मार्ग जोर आ सत्संग हुआ था मुक्ति का मार्ग ओर है कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर है कोई साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथा साहेब कबीर के सत्संग एक दिन आ गए गौर वो सिद्धि बल से बोलते सतगुरु कहें ज्ञान की बाता वो सिद्धि बल से बोलता सतगुरु कहें ज्ञान की बात जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़िया माथा जब पूर्ण से दी दिखला तब नाथ जी रगड़िया गोरख ने वेद शब्द का पाया सतगुरु चरणा बीच पसर के सतगुरु चरणा बीच पसर के बीच पसर के मुक्ति का मार्ग जोर है मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोरे को ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा ब्रह्मा विष्णु महेश किया सत्संग गरुड़ के साथा तीनों देवानो कहने लगे हम सर्व लोक विदाता तीनों देवानो कहने लगे हम सर्व लोक विदाता गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवा दो दाता गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवा दो नहीं जिया तब न्यो बोले यो तो आठ परम ईश्वर के ये तो आठ परम ईश्वर के ये तो हाथ परम ईश्वर के मुक्ति का मार्ग जोरे मुक्ति का मार्ग जोरे कोई है मुक्ति का मार्ग जोरे कोई सत्संग होया था सामन के घर पे किसी उही सतगुरु में मनी सत्संग सामन के घर पे किसी उही सतगुरु में मन अन्न नहीं था प्रसाद को फिर चोरी करण की ठानी अन्न नहीं प्रसाद को फिर चोरी करण की सतगुरु सेवा कारण खुद लई लड़के की पराणी सतगुरु सेवा का स्वयं लई लड़के की पराणी भगत वो पाला जीत गए जो ओए आश्रय सतगुरु के जो ओए आश्रय सतगुरु के जो ओए आश्रय सतगुरु के मुक्ति का मार्ग जोरे मुक्ति का मार्ग जोरे कोई देखो सत्संग करके के मुक्ति का मार्ग जोरे मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्शे मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब द प्रेम भाव सतगुरु में ओजा फिर सज अमृत बरसे प्रेम भाव सतगुरु से हो तब सज अमृत बरसे सार शब्द पाए बिना सतलोक जानन तरसे सार शब्द पाए बिना सतलोक राम पाल मुक्ति को पाले हरदम सतगुरु नाम सुमर के हरदम सतगुरु नाम सुमर के हरदम सतगुरु नाम सुमर के मुक्ति का मार्ग जोर के मुक्ति का मार्ग जोर कोई देखो सत्संग करके कोई
के मुक्ति का मार्ग जोरे कोई
सत सही। अभी शब्द के माध्यम से परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब की आपने और विशेष महिमा सुनने को मिलेगी, जिसमें कई बार तो आपका मन स्वीकार करेगा कभी नाकार करेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो शास्त्र आज तक सुने थे उनसे आगे हमारी बुद्धि बड़ी मुश्किल से सरक पाती है। कोई भी जानकारी या ज्ञान होता है वो सुनने से ही हुआ करता है। कबीर साहब बंदी छोड़ चारों युगा में आए हैं, सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से। जब मुनिंदर नाम से आए थे तो श्रीलंका पर जब पुल बनाया था समुद्र पर कबीर साहब की रजा से, वो पत्थर हल्के हुए थे। रामायण में हम सुनते थे कि भगवान राम ने पत्थर स्वयं रखने चाहे थे, वह डूब गए थे, नहीं तरे। नल नील ने भी कोशिश करी, वो पत्थर नहीं तरे। फिर कहते हैं कि हनुमान ने राम का नाम लिख दिया था, ज्यां ते तिर गए। ये कोई बात हुई? हनुमान पहले वही नहीं था क्या? भगवान राम ने उसके हाथ जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? अगर हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी तो समुन्द्र के आगे उन्हें प्रार्थना क्या क्यों करनी पड़ी? ऐसा नहीं था। जिनको ज्ञान नहीं था उन्होंने अपना घुमोड़ दिया, इधर उधर से घुमा फिरा के उसको सेट कर लिया। कबीर साहब ने आके और मुनिंद्र उस निरंजन की दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए और साहब की रामचंद्र जी की साहब ने स्वीकार की थी, मदद की थी। अब एक बार क्या होता है, जब सीता जी को रावण उठा ले गया और भगवान राम खूब तंग पा लिए, उन्होंने ये मालूम नहीं हुआ कि वो कहां गई हुई है। अब यहां पर क्या कहते हैं, बोले आदमी नौके वो तो लीला कर रहे थे। अरे भले पुरुष, वो लीला का समय था। लड़की औरत ने उठा ले गए और उसकी इज्जत का नाश होने वाला। अगर भगवान ने बेरा था तो उसी समय और भेज करके हनुमान जी को, क्योंकि वो तिर सकता था, कूद सकता था, और कह देते और जाकर के सेना चला ले जाते, ऊपर तो उड़ा ले जाते। लीला चलो और तो मान ले, लीला भाई रो रहे थे, ऐसे कर रहे थे, लेकिन इतना समय विलंब करना वो लीला क्या थी? नहीं थी। भगवान राम को नहीं जानती वो कहां गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि निरंजन ने उतनी ही बुद्धि दी है हमारे को, जो अवतार भेजे हैं उससे ज्यादा उसको बुद्धि नहीं दी। जहां पर जितनी शक्ति, वो 14 कला के भगवान थे, भगवान कृष्ण 16 कला के थे और 2 कला परशुराम की रामचंद्र जी ने ली थी जब वो 16 कला के हुए थे। और कला तो 1000 कला का भगवान स्वयं निरंजन है, तो 1000 कला के निरंजन के सामने ये 16 कला कुछ भी कोई ना। ऐसा भी नहीं 16 कला में शक्ति नहीं, जैसे 4 हॉर्सपावर की मोटर भी बहुत काम कर दे, लेकिन 1000 वाली का सामने हुआ कुछ भी कोई ना। अब क्या हुआ, हनुमान जी को भेज दिया कि हनुमान तो ढूंढ का भाई। हनुमान जी कहते हैं लंका में कूद जाता है और भगवान राम की एक मुद्रिका लेके गए थे, वो छाप अंगूठी जिस पे राम नाम लिखा हुआ था। अब जाके सारे वन में 9 लखे बाग में घूम लिया, एक वृक्ष के नीचे माता जी बैठी हैं और बहुत ही मायूस ढंग से दुबली पतली हो गई है। छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी पेड़ पर बैठ गए और उसकी आंखों में पानी बह रहा है सीता जी के। हनुमान जी ने ऊपर से वो अंगूठी डाल दी उनके गोड्या में। अंगूठी ने देख के कि ये तो भगवान राम की अंगूठी है, ऊपर ने देखा एक बंदर बैठा है। अब और दुनिया डर जाती है कि इन वानरों ने भगवान राम को खा लिया, वो बेहोश हो गए होंगे, क्योंकि मेरी याद में कई दिन की बात होगी, खाना पीना खाया नहीं होगा, दुर्लभ होकर दुर्बल होकर गिर गए होंगे। अब क्या कहे उसको, जब उस अंगूठी को देख, क्यों देख, हनुमान जी ने ना रखी थी या माता है, उस अंगूठी को देखकर बार बार मत्थे से लगा रही है और रो रही है। कहते रे बंसर, तने तो आखिरी निशानी भी लाकर दे दी मेरे सुहाग उजड़े की। जब जान गया कि सीता जी है, उसी समय नीचे आ जाते हैं और कहते हैं माता जी मैं तो आपकी खोज करने खातिर भगवान राम ने भेजा हूं और चिंता ना करें हम जल्दी आए। न बोली रेतन तो मेरा कति जल डगा दिया था क्या की गुठी लाया तू तो आके कह देना चाहिए था तन तो मेरा कति रही खी भी मार दी थी पागल यू के करा तने। न बोले माता जी मन पहचान नहीं थी आपकी इसलिए मैंने ये डाली थी कर मारा वो होगी तो ठीक है ना तीसने उठा के फिर भाग लूंगा और कोई होगी तय तन्यो बोली। ने बोली माता जी मुझे भूख लगी हुई है रोटी खाऊं। ने बोली भाई मैं किसके पूड़े खुआऊं मुझे समय पर नहीं मिलता यहां पर। ने बोला फल लग रही है खा लूं। ने बोली भाई देख तोड़ के ना खाइए अरे मेरा जीना आराम कर देंगे आराम जादे को नीचे गिरा हुआ तो वैसे खा लिए भाई न छेड़िए मतना। उन्हें सोची इन तो कसाइया ने भैया माता जी कति दुखी कर रखी है बेचारी इतनी डरा रखी है कि यार फल तोड़ती है भी डरे। उसने पकड़ा उसके वृक्ष के चोटी और बगा दी समुद्र में कति 900,000 बाघ कति उजाड़ के गिर दिया और पहले छक्का खाए और फिर बाकी रहे खे बगा दिए समुद्र में। रखवाले आए उन्होंने गिर दिए वो रावण दौरे गए यानी लंबी सबको मालूम है इस कथा का। तो हनुमान जी फिर नो बोली माता जी भगवान का क्यों कर पेटा भरा है मैंने कोई ऐसी निशानी दे दो लंबी लंबी